بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بہت معذرت خواہ، تھوڑا سا سسٹم میں ایشو ہو گیا غالباً اور ہماری آواز آپ تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اس کے معذرت خواہ ہیں. بہرحال سسٹم ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ سلسلہ میرے خیال میں چلتا. جب ہم بات تربیت اولاد کے حوالے سے کر رہے تھے، بہت معذرت، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو جائے انشاءاللہ. جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں برکتیں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے، اگر بچہ پیدائش سے لے کر 4 مہینے تک گریا کرتا ہے، بلا وجہ کی روتا ہے، بلا وجہ کی ضد کرتا ہے، اور ماں باپ اس کے رونے سے، اس کے ضد کرنے سے پریشان اور مضطرب ہوتے ہیں، بچے کا رونا 4 مہینے کی عمر تک والدین کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح لکھی جاتی، اور اگر بچہ 8 مہینے کی عمر تک راتوں کو گریا کرے، بے چین رہے، ماں باپ کی نیند ڈسٹرب ہو، والدین کے نام اعمال میں الحمدللہ کی تسبیح لکھی جاتی، اور اگر 12 مہینے تک کا بچہ راتوں کو دن کو روئے، اذیت ہو، تکلیف ہو، اور اس کے رونے سے ماں باپ کو تکلیف ہو، اللہ ماں باپ کے نام اعمال میں سبحان اللہ کی تسبیح لکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ وہ تسبیحات ہیں جو اللہ کے عرش پہ لکھے، یہ والدین کے لیے. اور اگر کوئی خاتون بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے بچے کی پیدائش کے وقت جو اسے تکلیف اور درد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے عوض میں، اس کے بدلے، اس خاتون کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما دیتا. بس اللہ نے کسی وجہ سے، کسی حکمت کے تحت والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھ. والدین کی تربیت ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری. سامعین کرام، کیونکہ کلاس ہیں اور آپ سب ایز اے کلاس بیٹھ کے سن رہے ہیں، ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، دل سے نکل رہی ہے اور اللہ کرے دل میں ہی اتر جائے. جب ہم بچوں کے رشتے دیکھتے ہیں، یا بچوں کی شادیوں کی تیاریاں کرتے ہیں، یا ہماری جوان نسل جب اپنے شادیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم ہال کے بارے میں کہ شادی کہاں ہوگی، ڈریس کے بارے میں کہ کیسے ڈریس پہنا جائے، کس کس کو دعوت دینی ہے، ایونٹ کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں پہ ہم بہت ٹائم لگا کے ڈسکس کرتے ہیں. اچھی بات ہے، خوشیاں منائیں، خوشیاں منانے سے کوئی نہیں روکتا، اللہ آپ کی خوشیوں میں خوش رہتا ہے. لیکن جہاں ان تمام چیزوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، کیا وہاں ہم، ہمارے بچے، ہماری بچی، ہمارا بچہ، خاندان کا کردار، میاں بیوی کے حقوق، آنے والی اولاد کی تربیت، اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کسی کتاب کا مطالعہ، یا کسی ماہر عالم دین کے پاس جا کر اپنے لیے کونسلنگ کے ذریعے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے کامیاب بنانا چاہیے، اپنی بیوی، اپنے شوہر کے جو خاندان ہیں ان کے ساتھ میرا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے بچے کی تربیت کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا ان پہ بھی ہم تھوڑا سا سیریس ہوتے ہیں؟ نہیں نا. اولاد کی تربیت روایات، حدیث، قرآن کے مطابق یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ پورا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، جو تربیت کے نظام، سسٹم، قانون سے آگاہ ہوگا वो बेहतरीन औलाद माशरे में, और जो इस कवानीन से नाबलद हो जाए, ऐसे वालदेन जब इनके बच्चे जवान होते हैं तब उन्हें अंदाजा होता है मेरा बच्चा नमाजी नहीं है, मेरा बच्चा घर में ध्यान नहीं देता, मेरा बच्चा और बहुत सारे सवाल। बस हमें शादी से पहले, शादी के बाद, औलाद पैदा होने से पहले, औलाद पैदा होने के बाद एक काम जो करना बहुत जरूरी है वो ये है, औलाद की तरबियत के हवाले से वो जो सिस्टम अल्लाह के नबी ने आईमे अथार ने हमें दिया है, उस सिस्टम को बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं भी आपको किताब का हवाला देती हूँ, जरूर पढ़ें ताकि एक कामयाब वालदे कामयाब औलाद इस माशरे को दे सके। जब हम बच्चे की बात करते हैं, पैदाइश से लेकर 3 साल तक के बच्चे की जरूरियात, आज का लेक्चर गौर से सुने ताकि कल और परसों आने वाले दिनों में जो हमारे लेक्चर्स का थोड़ा सा वो चेंज होगा, और मैं भी थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे पेरेंट्स को इश्यू है मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे पेरेंट्स को मसला है कि हमारे घर में बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, या मेरा बच्चा अपना सारा टाइम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे लगाता है, मैं क्या करूं। ये मसला हर घर का मसला है, आज के उसूलों को सुनिए और कल परसों इंशाल्लाह इन मसलों को हम बहुत आसान तरीके से रिवायात कुरान की रोशनी में, इतना आसान होगा कि आप सोचेंगे अगर इतना आसान था काश ये सारी बातें हमें इससे पहले पता चलता तो शायद हमारी जिंदगी इससे कई गुना बेहतर होती बेशक, लेकिन जब भी हम इरादा करें अच्छे काम करने का तो समझ जाइए वो दिन आपका पहला दिन है, और अल्लाह उस दिन की बरकत के सदके में आपके माजी की जो खताएं उसे माफ कर देता है। इसलिए आप टेंशन ना लें, बात को गौर से सुने और अपने पास नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट करें। औलाद की तरबियत पैदाइश से लेकर 1 साल तक, जब बच्चा पैदा होता है वो इमोशनली अपनी वालदा से वाबस्ता होता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने जिस धड़कन के साथ, जिस वजूद के साथ ये बच्चा रहा है उसकी माँ है। जब बच्चा पैदा होता है उसे सुकून तब मिलता है जब उसे माँ के करीब किया जाए। रिवायात में है और आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब बच्चा ज्यादा रोए उसे माँ की गोद में दे दो, माँ अपने लेफ्ट साइड पे जहां दिल है, दिल के करीब लाके बच्चे को हल्का सा सहारा दे दे, हल्के से पुश्त पे हाथ रखे, दिल की धड़कन सुन के बच्चे को सुकून आ जाता है। बस शुरू के 1 साल, बच्चे की पैदाइश से लेकर 1 साल तक की उम्र माँ को ज्यादा से ज्यादा बच्चे के करीब रहना। बच्चा रोए उसके रोने से लेकर उसके रोने की पहचान कि बच्चा क्यों रो रहा है, भूख लगी है, इसको गोद में उठाना है, इसके पैंपर चेंज करना है, वो जो बच्चे के रोने का अंदाज है वो माँ को पता होना चाहिए इस वक्त मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। जब आप पैदाइश से लेकर 1 साल तक की उम्र के बच्चे को रोते ही उसकी जरूरियात पूरी कर देते हैं और उसे बिला वजह रोने नहीं देते, यही आपका काम आपके बच्चे के अंदर मोहब्बत, कॉन्फिडेंस और आपसे मोहब्बत, अपने गर्दो नवाज से मोहब्बत बच्चे के अंदर मुंतकिल करता है। अब हैरान हो रहे होंगे ना, क्योंकि 1 साल के बच्चे को समझ आती है। जी जनाब, बच्चा जिस्मानी तौर पे छोटा है, वो अपने साथ एक अजीम रूह लेकर आया है, उसे भूख का पता चलता है, उसे प्यास का भी पता होता है, उसे मोहब्बत का भी पता होता है। आप 3 महीने के बच्चे को जरा ऊंचा बोले, जरा डांटे, वो रोने लगता है, उसको गुस्से का पता है, उसको प्यार का भी पता है। शुरू के 1 साल अगर आप बच्चे की तमाम जरूरियात को फौरी पूरा करेंगे, इसका नतीजा आपको कब मिलेगा? जब बच्चा 7 साल का होगा, इस 1 साल का रिजल्ट ये आपको तब देगा। हमारे बुजुर्ग उलमा उरफा कहते हैं, तरबियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज صبر وحوصلہ ہے. تربیت صبر کے نتیجے. تربیت کرتے ہوئے کبھی جلد بازی نہ کر. آپ نے پھلوں کے بہت سارے درخت دیکھے ہوں گے, قیمتی ترین پھل زیتون کا ہے. آپ نے کبھی زیتون کے بارے میں سنا؟ زیتون کا درخت جب کسان اس کی پرورش کرتا ہے, ایک دو تین چار پانچ چھ سات, 7 سال تک زیتون کا درخت پھل نہیں دیتا. 7 سال مالی کسان اسے کھاد دیتا ہے, اسے پانی دیتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے. 7 سال کے بعد تب جا کر زیتون اپنا پھل دیتا ہے, وہ پھل جو شفا بھی ہے, جس کا ذکر قرآن میں. اور یہ 7 سال مالی یا کسان تھکتا نہیں ہے, نا امید نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے میری روز کی پرورش, روز کی دیکھ بھال ایک دن مجھے پھل ضرور دے گی. اسی طرح والدین صبر تحمل کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کا بچہ 7 سال جب عمر کراس کرے تو ان ایام کی محنتوں کا صلہ اور ثمر آپ کو فوری فوری دے. شروع کے 1 سال میں گھر میں دادیاں ہیں, نانیاں ہیں, گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, میں تمام بزرگوں سے, ماؤں سے, بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی, بچے کو جو مرضی گود میں لے لے, دادی گود میں لے رہی ہیں, بہن گود میں لے رہی ہیں, بھائی گود میں لے رہا ہے, کوئی گود بچے کے لیے ماں جیسے نہیں ہو سکتا. بچے کو 1 سال صرف ماں کی وجود کی ضرورت ہے, ماں کا گود چاہیے. ایسے میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کا معاشرہ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں. اگر ایسے صورت حال میں آپ گھر کا کام, کچن کا کام اور بہت سارے جو گھروں میں سلسلے چلتے ہیں, یہ 1 سال ماں کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے دیکھے جیسے اس بچے کا حق ہے. یہ ہم اس ماں پر یا اس بچے پر احسان نہیں کر رہے, بلکہ اس بچے کا حق اس کے ماں کے ذریعے اسے دے رہے. کبھی کبھی یہ ذہنوں میں آتا ہے, سارا دن آپ بیٹھی ہوئی تھی, سارا دن بچہ گود میں لے کے بیٹھی تھی, آپ کو کیا ملا؟ یہ ملے گا یہ بچے کے 7 سال کی عمر کے بعد آپ کو ملے. ابھی صبر کریں, ابھی حوصلہ کریں, ابھی بچے کی 1 سال تک کی عمر, اس کے تمام ضروریات کو فوری سے فوری, اس کے رونے سے پہلے, اس کے ضد کرنے سے پہلے, اس کے چلانے سے پہلے آپ اس تک پہنچا دیں. مشکل ہے؟ نہیں. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے, معاشرے کی بات کر رہی ہوں, کہ آپ ماں بنی ہیں, ابھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے, یہ تو چھوٹا ہے نا, آپ کچن دیکھ لیں, آپ گھر کا کام کر لیں, میں بچہ دیکھوں گی. یہ حل نہیں ہے. بچی کو ماں کی گود کی ضرورت ہے. اگر بات تربیت کی ہے, پھر تربیت پرانی تربیت ہونی چاہیے, پھر تربیت اہل بیت کی تربیت ہونی چاہیے, پھر تربیت وہ طریقہ کار ہونا چاہیے جو اہل بیت نے ہمیں بتایا. ہم نے ایک سجدے کی بڑی تعریف سنی ہے, یاد ہوگا امت مسلمہ کتابوں میں ہے, مسجد النبی سجدے کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سجدے کی حالت میں تھے, امام حسین آپ کے پشت پہ سوار ہوئے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, میرے حبیب سجدے کو اتنا بڑھا دے کہ حسین خود نیچے اترے. کیوں کیوں؟ اگر امام حسین کی جگہ کوئی اور بچہ ہوتا تب بھی یہ اصول تھا. اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ بچوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اگر کوئی بچہ ظاہری طور پہ نواسے رسول ہیں, ظاہری طور پہ 2.5-3 سال کے شہزادے ہیں, ظاہری طور پہ امام علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صاحب زادے ہیں, اگر اسلام کو بچانے والے حسین علیہ السلام نبی کریم کے پشت مبارک پر سوار ہیں اور نماز کو طول دی جا رہی ہے. اگر والدین کو اولاد کے تربیت کے یہ والے اصول سمجھ آ جائیں تو اس حسین کے اصحاب بننے میں ہمارے بچے بھی شریک ہو سکتے. اولاد کی تربیت سسٹم اصول سمجھنا ہم سب پر فرض ہے. اور ایک سال تک کی عمر اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہیں کرنا اور اس کی تمام ضروریات کو فوراً سے پہلے پورا کرنا ہے. بچے ایک سال تک کی عمر میں سکن ٹچنگ اس کو ضروری ہے. اس کی خوراک ہے جیسے فیڈر آپ بنا کے دے رہی ہیں, پیمپر چینج کر رہی ہیں, اسی طرح ماں کی گود میں رہنا, ماں اپنے ہاتھ اس کے چہرے پہ, اس کے بال پہ, اس کے سر پہ, اس کے جسم پہ پھیرے, یہ جو ٹچنگ ہے یہ بچے کی فیڈر سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. سکن ٹچنگ. اور زیادہ تر آپ دیکھیں ایک سال کا بچہ ماں کے سینے سے رکھ کے سوتا ہے, ماں کی گود میں سوتا ہے, کیونکہ اس کو یہ گود, یہ سینہ, یہ ماں کا جسم اس کی روح اور اس کی ایموشنل جذبات کے لیے ضروری ترین چیزوں میں سے ایک. یہ رہا ایک سال تک کے بچے کے تمام ضروریات. ہاں اگر آپ اس بچے کو روتے ہی اس کی ضروریات پوری نہ کریں, اس کے رونے کو آپ سنے نہیں, اسے اگنور کر دیں, اس بچے کے اندر نفرت, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے نفرت, اندر اس کی ایک ضد, اور یہ ضد یہ نفرت کب نظر آتی ہے؟ جب یہ 7 سال, پھر وہ ہماری بات نہیں سنتا, پھر ہماری باتوں کو اگنور کر دیتا ہے, پھر وہ سارے کام کرتا ہے جس سے ہم چڑھتے. بس شروع کے 1 سال, نتیجہ 7 سال کے بعد. اگلے 2 سال میں جب بچہ 1 سال سے 2 سال تک کا ہوتا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں سمجھنا سیکھنا ضروری ہے. نمبر 1, یہ بچہ اپنے ارد گرد میں جو جو لوگ ہیں, دادی دادا, نانی نانا, جو جو رشتے ہیں, ان سے ایموشنلی بہت اٹیچ ہوتا ہے, اپنے چھوٹے موٹے کھلونوں سے اٹیچ ہوتا ہے. کھلونے اور یہ رشتے جن سے یہ مانوس ہیں, ان سے بچے کو دور نہ کریں. 2 سال تک کی عمر اس کو دادا بھی چاہیے, اس کو دادی بھی چاہیے, اس کو وہ تمام خونی رشتے چاہیے جو گھر کے اندر ہیں, اور اس کو اپنے کھلونے سے محبت ہے. اگر آپ اچانک ان چیزوں میں اور بچے میں فاصلہ ڈال دیتے, بچہ نفسیاتی طور پہ ایموشنلی وہ بہت ہی زیادہ سٹریس اور پریشانی, اور یہ پریشانی یہ سٹریس کب آپ کو نظر آئے گا؟ جب اس بچہ سکول جانے لگے. جب بچہ سکول جانے لگے, پڑھائی میں لکھنے میں مشکل, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو گیا, ٹیچر بھی اچھے سکول بھی اچھے, اسے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ 1 سال سے 2 سال کے درمیان جو اس کے ایموشنل, اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, اس کا ریزلٹ یہ آپ کو کب دے گا؟ جب سکول گئی. تھوڑی سی بات پیچیدہ ہے نا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں موبائل دے دیا بچے کو, چپس بنا دیے, کے ایف سی لے گئے, آپ نے تربیت کر لی؟ نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. آج کل ہم جتنے یہ سروسز زیادہ دیتے جا رہے ہیں, اتنے بچے بے حس ہوتے جا رہے ہیں. آپ اس کی بات ہے, اگر آپ بچوں سے پوچھیں نا آج کہاں جائیں, آج ہم کھانے کے لیے کہاں جائیں, آج ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ منتے کرتے ہیں, آج فلان جگہ چلیں کھانے پہ, فلان جگہ چلیں, آپ پیسے بھی لگاتے ہیں, بچے بھی لے کے جاتے ہیں, گاڑی میں بٹھا کے پیدل بھی نہیں جا رہے, جب آپ جاتے ہیں کھانے کا آرڈر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں بچوں کے منہ سوجے, ارے کیا ہو گیا, اتنا بل بھی بن گیا, اتنا کچھ کھلا بھی دیا, چہرے سوجے ہوئے, پھر آپ واپسی میں تھوڑا سا آپ کی بھی آواز اونچی ہوتی ہے, اتنا کچھ کرنے کے بعد تب بھی تم لوگوں کے موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یوں لگا کہ شاید ان چیزوں میں بچے کے اندر کی ضروریات پوری ہوئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. بچے کے ایموشنل اندر کی ضروریات پوری کریں, پھر شاید آپ کو بہت سارے خرچے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, اور بچے بے جا آپ سے توقعات بھی نہیں رکھیں گے. 3 سال کا بھی میں کر دوں تاکہ کل کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچے. 3 سال, 2 سال سے 3 سال, 3.5 سال تک ये वालिदैन के लिए, खसूसन माँ और बाप के लिए सबर आजमा अय्याम, ये उम्र बच्चे की तजुर्बा और सीखने का। अक्सर घरों में लोग मुझसे काउंसलिंग जब करते हैं ये बात करते हैं कि हमारा बच्चा 2 साल तक तो ठीक था, अच्छा था, जहां बिठा तो बैठ जाता था, जो ये 3 साल का 3.5 साल का वह जिद्दी है, हर बात पे जिद करता है, हर चीज छेड़ता है। आप परेशान क्यों हो रहे? ये जिद नहीं है, ये हर चीज को छेड़ना तोड़ना नहीं है, ये उम्र में और आपके लिए सबर आजमा टाइम है। क्योंकि जब हम इस उम्र में बच्चे से कहते हैं हाथ ना लगाओ, आराम से चलो गिरोगे, इसे तोड़ना नहीं, इसे ये करना, इसे वो करना, ये बातें जब बच्चे के कानों में जाते हैं तो बच्चा तजुर्बतन आजमाता है कि हाथ लगाकर देखूं होगा क्या, इस चीज को मैं धक्का दूं देखूं होता क्या है, इस चीज को मैं गिरा दूं देखूं होता क्या है, सीढ़ियों से मैं तेज तेज चलूं होता क्या है। बच्चा 2 साल खत्म होने से लेकर 3.5-4 साल तक आपकी तमाम बातें जो उसके कानों में है उसको तजुर्बा कर रहा है। इसलिए आपको लगता है ये बहुत शरारती हो गया, ये बात नहीं सुनता, नहीं, वो नेचुरल, उसका तरीका बिल्कुल नेचुरल है, वो आजमाना चाहता है, वो देखना चाहता है, गर्म कप पे मैं हाथ रखू तो क्या होता। जब बच्चा आपके मना की हुई चीजों की तरफ तेजी से बढ़ता है, और ये उम्र ऐसी है जब आप ज्यादा रोक टोक करते हैं तो आपसे चिढ़ जाता है, फिर वो आपको आपके तरीके से घुमाता है। जब आप इस उम्र में ज्यादा ये करो ये ना करो डांट डपट इस तरह की अगर कैफियत आप पे तारी होती है, बच्चा आपसे दूर हो जाता है। बच्चा जहनी और दिमागी तौर पे कोशिश करता है आपसे जुड़ू बोले, कोशिश करता है आपको चिढ़ाए, आपको गुस्सा दिलाए, क्यों आप उसे ज्यादा रोकते। मिसाल दो, रुके टेबल पे जग है गिलास है, 2.5 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा तेजी से आके जग उठाए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? ना करो ना करो ना करो, टूटेगा टूटेगा गिरेगा, एक तरीका ये होता है। ऐसे ही ज्यादातर घरों में यही तरीका होता है। दूसरा तरीका, माशाल्लाह जग उठा रहे हो आराम से उठाओ, लाओ मैं गिलास पकड़ो तुम इसमें डाल। पहला तरीका ठीक था या दूसरा? मेरे ख्याल में दूसरा। आपको सब्र हौसला चाहिए कि बच्चे के हर काम में आप तरीके से उसे हैंडल करना सीखें। कभी कभी हमें होता है काश ये सारी बातें हमें हमारे पेरेंट्स को, हमारे यंगस्टर को ये बातें पता होती तो शायद हमारी नस्ल बेहतरीन औलादों में से, शायद वो सारे मसाइल जो इस घरों में वो सब कुछ ना होता। बस 2 साल से लेकर 3.5 साल की उम्र तजुर्बा का उम्र है, सीखने का उम्र है, हर चीज को हाथों से टच करके लम्स करके आजमाने के दिन होते हैं। इसलिए माँ बाप को पूरी तवज्जो के साथ बच्चों के साथ रहना है, उसके हर काम पे उसके साथ रहना है, रोक टोक बिला वजह की नहीं, डांट के नहीं, गुस्सा करके नहीं, अपनी आवाज ऊंची करके नहीं, इसका प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल इसका फायदा होता तो अब तक हमें फायदे उसकी मिल चुकी होती, इसका फायदा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तरीके से, थोड़ी सी टेक्निकल अंदाज से बच्चे की हैंडलिंग करना सीखें। जब बच्चे 2 साल से लेकर 3.5 साल तक एक काम वालदेन माँ और बाप दोनों दादी दादा हैं, अल्लाह उन्हें तुल उम्र अता करे, ये भी दिन में आधा घंटा पौना घंटा बच्चे को अपना करीब करें और इसे कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाए। आज आप पूरा दिन बच्चे को कैसे देखना चाहते हैं? बच्चे के कपड़े साफ हों, टाइम पे खाना खाए, टाइम पे सब कुछ करे, ये आपकी ख्वाहिश है। इसे आप एक कहानी की सूरत में बच्चे को बता दें। जब आप आधा घंटा 45 मिनट बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं और एक अच्छी स्टोरी जिसमें वो बच्चा को रिएक्शन भी देता है, आप देखिए पूरा दिन वो बच्चा आपको, जिससे आप तंग होते हैं वो तंग नहीं कर रहा होता, वो तो अपने फितरी काम कर रहा होता है, वो अपने नेचुरल उसका तरीका है। इस कहानी और स्टोरी के बाद आपको लगेगा इस बच्चे में चेंज आया। एक और चीज, इस उम्र में बच्चे खाना कम खाते हैं, खाने से खेलते ज्यादा है। गिरा दिया, प्लेट उल्टा दी, ये जो खाने से खेलते हैं टेंशन ना लें, बड़ा सा दस्तरखान बिछा दें, उसकी प्लेट बना दें, थोड़ी देर खेलेगा। अगर बच्चा अपने हाथ से चार नवाले खा ले, वो चार नवाले इसके जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, उससे कि माँ उसे बांध के बैठ के चम्मच से खिलाए, इसको खुद खाने दे। आज गिरा रहा है, आज वो बच्चा जो है, बच्चा है ना, बच्चा है, वो खाने से खेल रहा है, चम्मच इधर उधर कर रहा है, पानी गिर रहा है, टेंशन ना ले। आज आप इसे टेक्निकल सब्र हौसला से इसको कंट्रोल करें, डांटे बगैर, चीखे बगैर। जब ये बच्चे चार पांच साल का होगा, खुद से खाने की तरफ बढ़ेगा, खुद से खाने की तरफ आएगा। हमारे यहाँ होता क्या है, बच्चों को हम बचपन में जिस तरह मर्जी खिला देते हैं, जब ये छह सात साल का होता है, आप देखिए हर घर में शिकवा, ही खाता नहीं, क्यों नहीं खाता, इसको जो चीज बना के दो, जो चीज मंगवा के दो, ये खाता नहीं है, ये दूध पीता नहीं है, क्यों नहीं खाता, ये मीट खाता ही नहीं है, क्यों। वो जो इसका टाइम था ना, खाने के साथ मानूस होके, खाने को लम्स करके, उसके साथ जो खेल के, आपको ये खेल लगता है, हमें लगता है ये खेल रहे, नहीं, बहुत कुछ सीख रहा है, जो अगले चंद सालों में इसने हमें उसका रिजल्ट देना। आज के लिए औलाद तरबियत औलाद के हवाले से इतना काफी है, हम अपने दूसरे मौजू की तरफ चलें। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे चार साल से लेकर नौ साल तक की उम्र के बच्चे और हमारे बच्चे नमाज के लिए, नमाज की तरफ क्यों नहीं आते, क्यों हमें कहना पड़ता है, जब हम बच्चों से कहते हैं नमाज की तरफ जाओ, बच्चों के चेहरे देखने वाले होते हैं, ऐसे ही है ना, हम उनकी पूरी जरूरियात पूरे करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी बात नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, ये सब हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में सुनेंगे। हमारा दूसरा मौजू इमाम जमाना अलैहिस्सलाम, कुरान की रोशनी में, और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को समझने, जानने, पहचानने के लिए, और जिस जमाने में इमाम अलैहिस्सलाम का जहूर होना है, उस जमाने को पहचानने जानने के लिए हमने जिस सूरा का इंतखाब किया, वो सूरे नूह, सूरे नूह आपने पढ़ा, तफसीर भी देखा होगा, आप यकीनन तिलावत करके आए हैं, मुझे आपके मैसेज से अंदाजा होता है कि आप कुरान से इश्क करने लगे, कुरान से मोहब्बत करने लगे। मेरी दिन रात की दुआ है, अल्लाह हमें कुरान और अहले बैत से जोड़े रखे, दुनिया और आखिरत में हमें कभी कुरान और अहले बैत से जुदा ना करे। बेटी जितना मर्जी पढ़ लो, जो किताब हिदायत है, जाहिरी और बातिनी हिदायत, वो कुरान। जानते हो कुरान किसके अल्फाज है, अल्लाह के अल्फाज है, सीने रसूल पे उतर है, जबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि से जारी है, और इसकी तफासीर 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम ने की। ये रिवायत सुनिए, खुसूसन नौजवान माए, रिवायत है, अगर कोई भी हदीस तुम सुन लो, कोई भी हदीस, ये जो रिवायत है, नबी करीम से लेकर हर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने ये जिक्र फरमाया, अगर तुम कोई हदीस सुन लो, वो हदीस कुरान से टकराए, कुरान की आयतों के खिलाफ हो, तो समझ जाना वो हमारी हदीस नहीं है, वो जाली हदीस। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं कोई बात करूं तुमसे, तो मुझसे पूछो, इमाम रज़ा ने कहां से बताया, तो मैं तुम्हें कहूंगा, हम अहले बैत सिवाय कुरान के कोई कलाम नहीं करते, हम अहले बैत मुफस्सिरान कुरान हैं, हम अहले बैत वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, वर्रासखून फिल इल्म, कुरान के मुफस्सिर हम हैं, बस कुरान सीने रसूल पे नाजिल हुआ, और उसके मुफस्सिर नबी करीम और आइम्मे अतहार हैं, इस कुरान से मोहब्बत हमारी और आपकी निजात बका है, जो कुरान से जुड़ता है दुनिया और आखिरत में वो कभी अकेला नहीं रहता। सुन लो बच्चों, करो इश्क कुरान से, कुरान धोखा नहीं देता, अकेला नहीं छोड़ता। कयामत के दिन, कयामत है ना, होगी ना इंशाल्लाह, कयामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन उठाए जाएंगे, आवाज़ कुदरत आएगी, حافظہ نے قرآن کہاں ہے، قاریہ نے قرآن کہاں ہے، عاملہ نے قرآن کہاں ہے، قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آپ جیسے مومنین، آپ جیسے اہل بیت قرآن سے عشق کرنے والے آگے بڑھیں گے. آواز قدرت آئے گی، جو جو تم نے قرآن پڑھا، جو جو سیکھا، بتاتے جاؤ، آیتیں پڑھتے جاؤ اور اپنی منزلیں بلند سے بلند کرتے جائے. ہم آیتیں تلاوت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچیں گے جس مقام کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے مقام مقربین. مقام مقربین تک دنیا اور آخرت میں پہنچنے کا ذریعہ قرآن پہ عمل کرنا ہے. ہم سورہ نوح پہ آئے تھے. سورہ نوح میں ہمیں پتا چلا حضرت نوح علیہ السلام کی جنگ ایک فرد سے نہیں تھی، ایک حکومت سے نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی جنگ پورے فرعون سے تھی. فرعون ایک حکومت، ایک سسٹم تھا مصر کے اندر. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جنگ نمرود سے تھی. نمرود ایک خطے میں تھا، ایک علاقے کا بادشاہ تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح بہت سارے انبیاء، لیکن جناب نوح علیہ السلام کی جنگ ایک فرد یا ایک خطے کی حکومت سے نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں ایک حکومت، ایک سسٹم ایسا بنا تھا، وہ سسٹم الہی سسٹم کے بالکل مخالف آ رہا تھا، اور وہ سسٹم کفر کا سسٹم تھا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عمر طولانی عطا کی اور ان کی نبوت 950 سال، کل میں نے جیسے ذکر کیا اللہ فرماتا ہے 1000 سال لیکن 50 سال کم، 950 سال نبوت کا دورانیہ تھا. اور یہ نبوت کا دورانیہ پوری دنیا میں جو کفر کا سسٹم تھا اس کے خلاف. اور جناب نوح ان انبیاء میں سے جو بہت صابر بھی تھے، بہت شاکر بھی تھے. لوگ مذاق اڑاتے تھے جی، مجنون کہتے تھے جی. جناب نوح علیہ السلام کو مجنون، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیوانہ نعوذ باللہ. جب آپ کشتی بنا رہے تھے، دن کو بناتے، رات کو لوگ آ کے اسے توڑ جاتے تھے. اور سورہ نوح کی تفسیر ہوگی، جناب نوح علیہ السلام جب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی گفتگو فرماتے، جانتے لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ نفی کر کے اتنا مارتے تھے جناب نوح علیہ السلام کو کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے. جب ہوش میں آتے دوبارہ جا کر لوگوں کی نصیحت کرتے. میں نے دیکھا قرآن کی تفسیروں میں جناب نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی میں عجیب مشابہت ہے. ان دو ہستیوں کی محنت میں عجیب مشابہت ہے. قوم نوح حق سے بھاگتی تھی، حق سے فرار کرتی تھی، اپنے ترجمہ میں دیکھا ہوگا. اور ہمارے نبی کی امت، مکہ کے لوگ، ان یریدون الا فرارا، یہ بھی بھاگتے تھے، یہ بھی فرار کرتے تھے. عجیب ہے. جناب نوح علیہ السلام لوگوں کو مغفرت کی دعوت دیتے تھے، آؤ میں تمہارے لیے طلب استغفار کروں، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں، پلٹ آؤ، اللہ کی دین کی طرف آؤ. اور ہمارے نبی بھی اپنی امت سے کہتے تھے تعالو استغفر لکو، آؤ پلٹ آؤ دین خدا کی طرف، میں تمہارے لیے طلب استغفار کروں. عجیب مشابہت ہے امت جناب نوح علیہ السلام اور امت جناب نبی کریم. ایسے ہی اس سورہ کا انتخاب نہیں کیا. جناب نوح علیہ السلام کی قوم متکبر تھی، متکبر. نبی کریم کی قوم بھی متکبر ہے، متکبر. جب جناب نوح علیہ السلام لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی دعوت دیتے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، توجہ نہیں دیتے تھے، بات سنتے نہیں تھے. اور یہی سب کچھ ہم دیکھتے ہیں جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ اپنی قوم کو بشارت دیتے، نصیحت کرتے، ہدایت کرتے، لا یسمعون ھذا القرآن، قرآن سنتے نہیں تھے، کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، حق کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے تھے. अजीब है। ये दो उम्मतें, ये दोनों कौम जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल मेहनत का नतीजा 20 मोमिन के, सिर्फ 20, बाकी काफर थे। आपने सूरह नूह के तकरीबन आयत नंबर 12 तक देखा होगा, अल्लाह लफ्ज इस्तगफार 3 मरतबा, पलट आओ मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करूं, पलट आओ अल्लाह तुम्हें माफ करे, पलट आओ अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला माफ करने वाला है। जब अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से रसूल जो नाजिल हुए, जो आए, जब उम्मत को हिदायत की तरफ दावत दे, मगफिरत की तरफ दावत दे, और उम्मत उसकी बात, नबी की बात, मुरसल की बात, कुरान की बात, हिदायत की बात ना सुने, तो अल्लाह ऐसी कौमों पर अजाब नाजिल करता है। और अल्लाह के अजाब नाजिल करने के अंदाज भी अजीब है। कभी सैलाब आता है, कभी जलजला आता है, कभी बीमारी आती है, कभी वबा फैलती है, और कभी ये सूरत हाल है जो इस वक्त हम पूरी दुनिया में सोचें, किसकी आह लगी, सोचें कहां कहां हिदायत की आवाज आई, तौहीद की आवाज आई, मजलूम की मदद की आवाज आई, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की आवाज आई, और हमने उस आवाज को सुनी अनसुनी कर दी। आज हम सब एक ऐसे आजमाइश से गुजर रहे हैं, और यकीनन ये आजमाइश हमारे अपने किए हुए गुनाहों का वो कफारा है। अभी तो अल्लाह ने हमें वार्निंग दी है, अभी तो अल्लाह ने हमें सिर्फ थोड़ा सा हिलाया है, अल्लाह ने अभी सिर्फ हमें अपनी आंखों के सामने मौत को करीब से दिखाकर हमें कुछ बताना चाहता है। आज भी नबी रहमत की आवाज है, आज भी नबी मुरसल की आवाज है, पलट आओ, पलट आओ तौहीद की तरफ, पलट आओ नबूवत की तरफ, पलट आओ इमामत की तरफ, पलट आओ इखलाक़े करीमा की तरफ, पलट आओ, ताकि ये अजाब, ये गुनाह, ये बलाएं तुमसे दूर हो जाएं। आज भी पलटने का वक्त है। अगर अब भी अल्लाह की हिदायत की आवाज पे लब्बैक ना कहें तो नतीजा क्या है? सूरह नूह की वो आखिरी आयतें जिसमें जनाबे नूह फरमाते हैं, अल्लाह इनमें से किसी को बाकी ना छोड़। दो जुमले और कहूं फिर हम दज्जाल की तरफ चलें। कौम नूह की सिफात थोड़ा सा डिस्कस कर लूं ताकि हम देखें ये सिफात हमारे अंदर तो नहीं। नंबर वन, जब हक की बात होती थी, अल्लाह की बात होती थी, इबादत की बात होती थी, लोगों की मदद करने की बात होती थी, अल्लाह की बंदगी की बात होती थी, बुराई ना करो, जुल्म मत करो, गिबत मत करो, हसद मत करो, जब ऐसी बातें होती थी, जानते हो कौम नूह क्या करती थी? नाक चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और अपनी निगाहों में, अपनी आंखों से, आंखों के देखने के तरीके से हजरत नूह को तकलीफ देते। और क्या करते थे? हक बात के सामने जिद, हदड़मी। अल्लाह करे ये सिफा हमारे अंदर ना। हर शख्स, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक थर्मामीटर रखा है, अपने आप को खुद परखे। उस थर्मामीटर का नाम जमीर है। बेटा सामीन करा, तन्हाई में सोचे, तन्हाई में हक बात पे अंदर से जिद तो नहीं आती, छोड़ो ये तो बोलते रहते हैं, ये उलमा जो है ना, मौलवी हजरात बोलते, छोड़ो ही नहीं, फीलिंग तो नहीं आती। अगर हक बात के सामने अंदर जिद और हदड़मी, ये मेरी आदत है, मैं तो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, मेरा तरीके कार ही ऐसा है, अगर हदड़मी, जिद ये चीजें हैं, तो हम में और हजरत नूह के कौम में कोई फर्क? आगे मैं कुछ नहीं कहने, फैसला आप करें। यहां ब्रैकेट क्लोज करती हूं। कल आपने सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, सूरह असरा, सूरह बनी इसराइल, पहले मुझे ये बताइए, सही वाला बताना है, कमेंट्स में बता दे पेशे, कभी सूरह बनी इसराइल, सूरह असरा तवज्जो से पढ़िए, तर्जुमा पढ़ा है? नाम ही बनी इसराइल है भाई, नाम ही असरा है। इसके तर्जुमे पर गौर किया है जी, मुझे यहीं से पता चल रहा है आपकी जो फेस इम्प्रेशन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैं देख रही। ठीक है जनाब, आपने नहीं पढ़ा, नहीं पता आज आपने बावजू होकर सूरह बनी इसराइल की 7 आयतें शुरू की, तर्जुमा तफसीर के साथ बहुत गौर से पढ़ के आना, फिर हमें दज्जाल और अच्छी तरह से समझ आए। बस वापिस आए आज, क्योंकि हमारे सिस्टम में थोड़ा सा इशू था, आज क्लास हमारी 5:15 तक जाएगी, उधर से ताखीर और इधर से टाइम थोड़ा सा आगे जा रहा है, माजरत खा हूं, लेकिन मैंने अपना 1 घंटा पूरा करना है। सुनो, आज हमने दज्जाल पे बात करनी थी। दज्जाल क्या है, दज्जाल कौन है? अजीब है ये बोली दुनिया, अजीब है ये बोली इंसानियत। जो रिवायतों में दज्जाल की अक्कासी की गई है, हम सब उसी तस्वीर को ढूंढ रहे हैं। रिवायत है दज्जाल क्या होगा, उसकी एक आंख होगी। दज्जाल कौन होगा? एक आंख उसके माथे पे होगी, वो एक खच्चर पे सवार होगा, उसके एक हाथ में आटा होगा खाना, एक हाथ में नमक होगा, तो वो दुनिया में रिस्क तकसीम कर रहा होगा, पता नहीं इस तरह की कुछ उसकी निशानियां। और हम सब ढूंढने लग गए, चाहे हम किसी भी मकतबे फिकर के हों, किसी भी मकतब के, एक आंख वाला आएगा, बड़ा डरावना होगा, वो यूं चलेगा, उसके खच्चर पे बैठेगा, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या आप अपने फिजिक्स की किताबें भी यूं पढ़ते हैं? क्या आप अपने साइंस की किताबें भी यूं पढ़ते हैं? अहले बैत अलैहिस्सलाम जब तक कोई बात करते हैं, हमें किसी चीज की औसाफ और सिफात बता रहे होते हैं, और इन जुमलों के पीछे एक वसी समंदर होता है जिस तक पहुंचना है हमने। मसलन अगर कोई कह दे, देखा ये कितना ताकतवर है, बबर शेर की तरह है, तो क्या मतलब ये शेर है क्या? नहीं ना, इसकी ताकत शेर जैसी। अगर हम कहते हैं देख इसकी आंखें कितनी तेज हैं, तो वाह उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेता है, उकाब की आंखें हैं इसकी, तो क्या ये उकाब है? नहीं, इंसान आंखें तेज। जब हम किसी को किसी चीज से तशबीह देते हैं, वो तशबीह है, उसकी मिसाल है, ये वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जब कहा शेर जैसा है, ये शेर नहीं है। जब कहा गया उकाबी आंखें, ये उकाब नहीं है भाई, ये इंसान। जब कहा गया दज्जाल की एक आंख होगी, माथे पे होगी, तो हम सब सोचने लगे जी जी वो एक आंख वाला होगा। नहीं, आंखें उसकी दो हैं, लेकिन हक की आंख बंद है, बातिल की आंख खुली। दुनिया की आंखें खुली हैं, कयामत की आंख बंद है। जब दज्जाल के बारे में कहा गया कि दज्जाल एक खच्चर पे सवार होगा, एक दराज गोश जानवर पे सवार होगा, तो क्या मतलब? यानी उस दज्जाल का जो सिस्टम होगा, जो तरीका होगा, इस कदर अहमकाना होगा। खच्चर किस चीज की अलामत है? दराज गोश किस चीज की अलामत है? हमाकत की। हमाकत जिस चीज पे ये सवार होगा, वो सिवाय हमाकत के कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, या अली मुश्किल कुशा, ये दज्जाल है क्या? शख्स है, किसी फर्द का नाम है, क्या है? दज्जाल फर्द नहीं है, दज्जाल एक इंसान का नाम नहीं है, दज्जाल एक सिस्टम का नाम है, वही सिस्टम जो नूह के जमाने में भी था। आपको क्या लगता है दज्जाल सिर्फ हमारे जमाने में था? नहीं, हर नबी के जमाने में शैतानी कुवते थी, हर नबी के जमाने में दज्जाल थे, लेकिन फर्क यह है हमारे जमाने का दज्जाल बहुत सिस्टमेटिक होगा, बहुत तरीके से होगा। बाकी तमाम अंबिया के जमाने के जो दज्जाल, जो जालिम कुवते थी, शैतानी कुवते थी, उनका दायरा महदूद था, लेकिन आखिर जमाना में दज्जाल का जो सिस्टम होगा, जो तरीकेकार होगा, वो इतना वसी होगा कि वो लोगों के घर घर से लेकर घर घर से लेकर दर दर तक, लोगों के बेडरूम से लेकर किचन से लेकर चार दीवारी के हदूद क्रॉस करके लोगों के इतने करीब आ चुका होगा आखिर जमाना का दज्जाल। और ये दज्जाल जो एक शैतानी कुव्वत है, एक सिस्टम है, एक तरीकेकार है, इसका काम मुआशरे में क्या है। ये जो कहा गया कि ऐसे सवारी पे सवार होगा जो खच्चर की मिसाल दी गई, क्या मतलब? ये जो दज्जाल का सिस्टम है, तरीकेकार है, वो मुआशरे में आप जानते हैं क्या करेगा? नंबर वन, इंसानी अकदार को पामाल करेगा। नंबर टू, बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुरा करेगा। नंबर तीन, माल दौलत रखने वाले को इज्जत दिलाएगा और जो ईमान रखते हैं उन्हें डीग्रेड और इग्नोर करवाएगा। और क्या करेगा दज्जाल? दज्जाली सिस्टम जो घरों में हमारे तमाम हदूद पार कर माल के कामों में से एक नहीं है क्या? जमाने में बेहयाई और उरियानी, अकदार का कत्ल, दीन का पामाल होना, घरों से लेकर मुआशरे तक, क्या ये एक सिस्टम का काम नहीं? क्या इस सिस्टम ने हमें दुनियावी तालीम के साथ हमारी कदरों को, हमारी अकदार को, हमारे मजहब को, हमारे दीन को, हमारे जो एतकादात हैं उसको पामाल नहीं किया? आप लोग अभी एक आंख वाले को ढूंढ रहे हैं। एक आंख वाला होगा वो यूं चलेगा, क्या हो गया? दज्जाल सिस्टम है और वो सिस्टम जब घरों तक पहुंच जाएगा, सुनिए, आखिर जमाना में दो चीजें हतमी हैं, एक दज्जाल और एक सुफियानी का खरूज। सुफियानी का खरूज, ये सुफियानी वो लोग होंगे जो अल्लाह और रसूल का नाम लेते हुए दीन की जड़ें काटेंगे। सुफियानी कत्लोआम करेगा, सुफियानी बेगुनाहों को मारेगा। ये मैं नहीं कह रही, शिया सुन्नी दोनों रिवायतों में सुफियानी बेगुनाह बच्चों के सर काटेगा, सुफियानी इज्जतें पामाल करेगा। सुफियानी जब खरूज करेगा आखिर जमाना में, जमाने में कत्लो गारत आम होगी। और नबी करीम से रिवायत है, गौर फरमाइए, शिया सुन्नी दोनों किताबों में, आखिर जमाना में सुफियानी और दज्जाल दोनों मिलकर ये काम कर रहे होंगे। सुफियानी के पीछे दज्जाल की कुव्वतों का हाथ होगा जो दीन को मखदूश करके, पामाल करके जुल्म और बर्बरियत फैला रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, वो ये सब कुछ क्यों कर रहे होंगे? दज्जाल और सुफियानी एक प्लेटफॉर्म में आके दोनों मिलके ये सब कुछ क्यों कर रहे होंगे? उसकी वजह, ये जमाने के मसीहा की आमद को रोकने के लिए दोनों मिलकर एतकादात, दीन, मजहब, कुरान, शरीयत, इसको पामाल कर रहे होंगे। बस सुफियानी और दज्जाल एक सिक्के का दो रुख है। दज्जाल सिस्टम है। नौजवानों, जवानों जो इस वक्त सामने बैठे हो, मेरे बहुत प्यारे अजीज बच्चे, तुम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और तुम्हारे लिए मैं नहीं दुआ करती, हम कौन है दुआ करने वाले? तुम्हारे लिए तुम्हारे वक्त का इमाम दुआ करता है। तुम्हारे लिए जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो बच्चे, जब पढ़ने जाते हो, घर से निकलते हो, तो शायद वालदा दादी आपकी घर वाले सदका जरूर देते होंगे, लेकिन जब आप घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं, आपके पीछे आपके इमाम की दुआएं होती। इमाम अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं अपने चाहने वालों का नाम रोजाना, डेली 100 मरतबा हर चाहने वाले का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। इमाम जमाना की हदीसें हैं ये जो बयान कर रही हूँ। किताब कमालुद्दीन तमामुन्नेमा शेख सदूक की किताब है, उसमें ये तमाम रिवायतें हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हमारे चाहने वाले किसी परेशानी में होते हैं तो मैं सजदे में गिड़गिड़ा के उसके लिए दुआ करती हूँ, और जब वो किसी गुनाह की तरफ बढ़ते हैं तो मैं वक्त का इमाम उसको गुनाह से रोकने की कोशिश करता हूँ, और अगर वो गुनाह के दलदल में फंस जाए तो मैं इमाम उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। मेरे जवानों, तुम्हारे पीछे तुम्हारे इमाम की दुआ है, ये है। सोचने लग गए, इमाम की दुआ हमारे साथ। सोचो, याद है कॉलेज यूनिवर्सिटी वो दिन, याद करो। एक गुनाह का मोड़ था, अंदर से एक आवाज आई, याद करो, आवाज आई, मेहदी फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगा, इमाम हुसैन के मजलिस में कैसे रहूंगा, गाजी अब्बास का नाम कैसे लूंगा। जी, गुनाह के मोड़ में गुनाह को छोड़ के जो पलट आए, तुम कब पलट आए बेटा, कोई था जिसने तुझे पलटाया? आज दज्जाल की ताकत और कुव्वतों ने हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल, हमारे यूनिवर्सिटी को इस कदर अपने सिस्टम के लपेट में ले लिया है, महरम ना महरम, हलाल हराम, वाजिब हराम, इन तमाम चीजों की तमीज और इन तमाम चीजों को हमने तालीम के नाम पे, इन सब चीजों को हमने पामाल कर दिया, जिसके नतीजे में घरों में, दिलों में, जहनों में सुकून नहीं रहा। जनाब, कोरोना ने हमें एक वार्निंग दी है, अब भी पलट आओ। दुआएं अपनी जगह, कुछ इंशाल्लाह ये कोरोना का टाइम भी खत्म हो जाएगा, और ये जो आप लोग घरों में इस वक्त थोड़े से फैमिली को टाइम दे रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह किसी दिन इसका भी एंड हो जाएगा। कुछ ऐसे वादे इन दिनों इमाम वक्त से कर लो। अब जब दोबारा यूनिवर्सिटी जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, जो रूटीन के मामलात हैं मेरे लिए, बॉर्डर लाइन मेरे इमाम अलैहिस्सलाम की रजा और उनका राजी होना। बस आप जानते हैं आपके इमाम को आपसे कितनी मोहब्बत है, आपका नाम लेके रोते। मौला फरमाते हैं, जानते हो मैं उस बाप की तरह हूं, उस बाप की तरह जो अपने बच्चों की आवाज सुनता है, लेकिन मेरी आवाज तुम सुन नहीं सकते, मेरी मोहब्बत शफकत तुम देख नहीं सकते, और तुम जानते हो तुम क्योंकि हमें देख नहीं सकते, हमारी आवाज सुन नहीं सकते, हमें कितनी तकलीफ होती है। क्या तुम जानते हो कि मैं मेहदी जमाना अपने जहूर के लिए अल्लाह की बारगाह में किस कदर गिड़गिड़ा के दुआ मांगता। एक रिवायत कल रात मेरे नजरों से गुजरी, बाहरुल अनवार की रिवायत है और कुरान की बाज आयतों की तफसीर में इसका रेफरेंस भी है। इमाम अलैहिस्सलाम अपने जहूर से पहले 3 दिन खाने काबा में एतकाफ में बैठेंगे, और अल्लाह के घर में खाने काबा में एतकाफ के दौरान गिड़गिड़ा के रो कर अल्लाह से इल्तजा करेंगे, परदिगारा मेरे जहूर की इज्जत दे दे, तू देख रहा है तेरे बंदे, हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले किस कदर मुस्तर और परेशान मुझे पुकार रहे हैं, अल्लाह मेरे जहूर में ताजील फरमा। और इमाम के एतकाफ के आखिरी दिन अल्लाह की तरफ से इज़्ने ज़हूर होगा, और इमाम अलैहिस्सलाम अपने हाथों को रुकने यमानी पे रखेंगे और आवाज बुलंद करेंगे, निदा देंगे, जो कि निदा आपके 5 जुमले होंगे, और उन 5 जुमलों में आप अपना तारुफ करवाएंगे। वो 5 जुमले क्या हैं जिससे इमाम अपना तारुफ करवाएंगे और पूरी कायनात इमाम की आवाज से हिल जाएगी। वो 5 जुमले क्या हैं वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी, और कॉपी पेंसिल साथ रखिए। आपकी इमाम की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। बीमार हो, परेशान हो, पेपरों का मसला है, किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, ये आपका मसला है। एक मर्तबा उसको पुकार के तो देखो, एक मर्तबा कह के देखो क्या महदीयत है। एक मर्तबा पुकारो, इमाम जमाना आप हैं, हैं आप वजूद रखते हैं, मेरी इस मुश्किल घड़ी में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, पुकार के देखो। शेरे खुदा मुश्किल कुशा का बेटा है, किसी को खाली नहीं लौटाता, और वो मुश्किल कुशा हैं जिनके बारे में रिवायत है इमाम अलैहिस्सलाम के जहूर के बाद लोग कहेंगे हमने तो इन्हें देखा था, इनसे तो हम मिले थे, इन्होंने हमारी मुश्किल कुशाई की थी। रोज़े जुमा है, असर का वक्त है, मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये है, असर जुमा उसका दिल परेशान होता है, उदास होता है। जब वो उदास होता है, परेशान होता है, उसको खुद नहीं समझ आ रही होती वजह क्या। रिवायत है उदासी की वजह यह है, हर जुमा असर के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम इज्न ज़हूर मांगते हैं, जब उन्हें इज़्ज़त ज़हूर नहीं मिलता यतीमों की तरह रोते, घुटने पे सर रखते, ज़ारो क़तार रोते, और इनके रोने की आंसुओं की खुशबू दुनिया में फैल जाती। और जो जो मोमिन होता है, जो इश्क करता है बेहद से, उसके दिल उस आंसुओं की खुशबू को महसूस करता है, उसके नतीजे में उदासी आती। अगर जुमे के दिन दिल में उदासी है, मुबारक हो, मोमिन हो। अगर जुमे के दिन दिन बारी लग रहा है, दिन गुजर नहीं रहा, दिल कर रहा है किसी अकेले जगह बैठ के रोऊं, परेशान हूं, तो समझ जाना इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हुई। छोटा सा वाकया सुनाना चाह रही हूं, क्योंकि रोज जुम्मा है, जुमे के दिन तबरुकन सुना रही हूं। तेहरान के एक बहुत बड़े ताजिर हैं, कहते हैं कि रात को जिसे खाना खाया सब कुछ रूटीन में था, सो गया, सुबह उठा तो कमर से नीचे टांगे हिलती नहीं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब इस बीमार को देखा, कहा जनाब आपको फालिज का ऐसा अटैक हुआ है जो लाखों में एक होता है, और इसका कोई इलाज न मुल्क में न बाहर हो। अब ये है कि आप आखिर उम्र तक इसी तरह मफलूज व्हील चेयर में रहेंगे, आपका कोई इलाज, ऐसे बीमारों का कोई इलाज अब तक कोई इलाज साबित नहीं। वो शख्स कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे करबला मोहल्ला ले जाओ, मेरा वहां एक तबीब है, मेरा एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी को खाली नहीं लौटाता। कहते जब हमने करबला की तैयारी की, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था तुम इलाज हो, तुम्हें इलाज मुमकिन नहीं है, मैंने अपनी बीवी से कहा रिश्तेदारों को ये ना बताना हम करबला जा रहे, उनसे कहना हम बाहर के मुल्क इलाज के लिए जा रहे, कहीं ऐसा ना हो इमाम के दर से मुझे शिफा ना मिले किसी भी वजह से, तो लोग ये ना कहें तुम्हारे हुसैन ने तुम्हें शिफा नहीं दी। कहते हम करबला गए, पूरा महीना मैं करबला मुअल्ला में मौला हुसैन मौला पास के दर का तवाफ करता, और उन जगहों से गुजरा जहां कहीं अली अकबर का खून गिरा है, कहीं असगर का खून गिरा है, एक एक शहीद का मैंने वास्ता दिया। महीना गुजर गया, शिफा की कोई बात नजर ना आई। हमने इरादा किया वापस चलते, ये शख्स अब भी जिंदा है, अब भी बहुत सारे लोग इनसे मिल चुके हैं जिनका ये वाकया सुना रहे। कहते जब मैं इमाम हुसैन को विदा करके वापिस आने लगा, मैंने कहा मौला कोई बात नहीं, अगर आपकी मसलहत में मेरी शिफा नहीं है कोई मसला, दुनिया व आखरत में मेरा जामिन रही। ये कहकर हम करबला से निकले, हमने सोचा काजमैन सामरा की ज्यारत करते हुए हम वापस आए। हम एक कोस्टर में जा रहे थे सामरा, सामरा वो जगह है जहां 10वें और 11वें इमाम का तुर्बत है, इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के मकाम गैबत सामरा। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल रही थी, मेरे टांगों में इतनी तकलीफ थी, मैं दो सीटों पे लेट गया, तकलीफ की वजह से मैं रो रहा था और दिल दिल में सोच रहा था इमाम हुसैन ने भी शिफा नहीं दी, अब कहाँ जाऊंगा, क्या मैं सारी जिंदगी व्हील चेयर पे रहूंगा। मैं रो रहा था, इतने में बयाबा सहरा, जो लोग सामरा गए उन्हें पता कि दाएं बाएं सारा सहरा ही सहरा है, एक जगह गाड़ी रुकी, लोगों ने पूछा आपने क्यों रोका, कब वो सामने एक अरबी शख्स खड़ा है इशारा कर रहा है उसके लिए रोका। गाड़ी रुकी, एक हसीन जवान बस में सवार हुए। अरबी लिबास था, लंबा चोगा। बस में आते ही सबको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और सबसे बहुत मुस्कुराते हुए मिले और आकर एक सीट खाली थी बैठ गए। अब गाड़ी चलने लगी और मैंने भी एक देख ली उन्हें, मैं अपना रो रहा था। इतने में उस अरबी जवान ने ड्राइवर से पूछा, इस साल तुम मशहद क्यों नहीं किया? तो ड्राइवर ने बहाने किए, वो असल में वजह ये थी। अरबी जवान ने कहा, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं किया, अभी सामरा से वापस जाओ तो मशहद जरूर जाना, और जब मशहद जाना इमाम रजा अलैहिस्सलाम से कहना आपके बेटे ने आपको सलाम कहा। ड्राइवर समझा शायद सैयद होगा इसलिए ये बात की, और वो नौजवान ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत करने लगा और पूरे उस कोस्टर में एक कुरान की तिलावत की आवाज एक शहर की तरह गूंजने लगी और सब उस आवाज कदर मसरूर हो गए। कुछ देर बाद वो जवान मेरी सीट के करीब आया, मुझसे पूछा, मेरा नाम लेके पूछा, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? मैं कह जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ थे? करबला से आए हो? मैं हैरान हुआ, इनको कैसे पता है मैं करबला से आया। कहा जी जी करबला में था, वापिस जा रहा। कहा तू इस तरह लेटा क्यों है? मैंने अपनी बेबसी में रोते हुए कहा, असल में बीमार हूं, मैं चल नहीं सकता। उस शख्स कहता है, इस सैयद ने, इस अरबी लिबास की जवान ने मेरे घुटनों से लेकर मेरे पांव तक हाथ फेरा और कहा, तुम्हें तो कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम परेशान क्यों होते हो? खैर ये तो मुझे समझ ना आई, जरा बस आगे गई, ड्राइवर को आवाज दी, जनाब रोक दे, मैंने यहां उतरना है। इतनी देर में लोगों को इतनी मोहब्बत और उनसियत हो चुकी थी, गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर भी नीचे उतर आए, सब नीचे उतरे, इस जवान को खुदाफिस किया और मैं भी अपनी जगह से उतरा, नीचे जाके उनको गले लगा, उनके रुखसार पर न जाने मैंने कैसे बोसा लिया, उनके हाथों का बोसा लिया, उनका शुक्रिया बोला। ये नौजवान चंद कदम आगे ही पड़े थे खुदाफिस के, मेरी बीवी की आवाज आई, तू नीचे कैसे उतरा, तू तो चल नहीं सकता था। एकदम मैंने देखा मैं अपने पांव पे खड़ा, ड्राइवर हैरान हो गया, बाकी लोग हैरान हुए, हम अपनी उस परेशानी के आलम में थे, ये शख्स हम सबको जानता था, हमारा नाम लेके पुकारा, हमारे अंदरून बैरून हर चीज का उसे पता था, हमने दाएं बाएं देखा उस बयाबा उस सहरा में, हमें वो जवान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं। ये है तुम्हारे इमाम, ये है हमारे इमाम, जो किसी को मुस्तरहाल में देख नहीं सकते। याद रखना, हम तवस्सुल जिस इमाम से जिनसे मर्जी करें, अब इमाम हुसैन से तवस्सुल करें, हजरत अब्बास से तवस्सुल करें, नबी करीम से, हर मासूम जिनसे हम तवस्सुल करते हैं वो हमारी दुआ इमाम जमाना तक पहुंचाते हैं। आप जमाने के इमाम हैं, इस मोमिन को ये परेशानी, इस मोमिन का मसला हल करते हैं। हम सब के जमाने के मुश्किल कुशा हल्लाल मुश्किलात, हमारी आवाज को सुनने वाला, हमारे दर्द को समझने वाला, हमारे बीमारों को दुआ करने वाला, हमारे तवस्सुल को सुनकर अपने अजदाद का सदका सब कुछ देने वाले हमारे जमाने के वो इमाम जो आज इस वक्त अकेले हो। परवरदिगारा इस महीने की बरकतों बरकतों रहमतों के सदके हमारे इमाम के जहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस अय्याम में उस काबिल बना दे जो इमाम को लब्बैक कह सके और हम सबको जमाने के दज्जाली सिस्टम के मुकाबले में इलाही सिस्टम बनाने और अगर बन रहा है तो उसका साथ देने की तौफीक अता फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब 313 हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारे नस्लों को, आप जवानों को, हम सबको 313 में शामिल फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला की जमानत में शाद रहें, खुश रहें, सलामत।